ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त बृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, श्री वृंदावन धाम की जय। उद्धव जी कृष्ण के कजिन ब्रदर थे, चचेरा भाई। भागवत में नवे स्कंद में पूरे फैमिली का डिटेल वर्णन दिया है, पूरे एंसेस्टर्स मतलब पूरे उनके पूर्वज कौन थे, अलग अलग भाइयों के नाम दिए हैं, फिर उग्रसेन कौन है और कुंती की कितनी सारी कज़िन सिस्टर्स थी। उसमें एक कज़िन सिस्टर का लड़के का नाम शिशुपाल है, एक कज़िन सिस्टर के लड़के का नाम उद्धव है, ऐसे बहुत बड़ा परिवार है। फिर देवक और देवक की पुत्री का नाम देवकी, ये सब लंबा चौड़ा परिवार है। उसमें एक कुंती के बहन के पुत्र का नाम उद्धव है। और उद्धव जी की विशेषता यह है कि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं। साधारण तौर पर पृथ्वी के मनुष्यों को देवताओं के गुरु का शिष्य पद नहीं मिलता है, लेकिन दो ही लोग उनके शिष्य हैं, एक भीष्मदेव और एक है उद्धव जी। तो बड़े विद्वान थे वो। ऊपर से उद्धव जी का जो अपियरेंस है ना, वो कृष्ण के जैसा ही है, नीले रंग के हैं। अगर आप ठीक से नहीं देखेंगे तो साक्षात कृष्ण ही है वो दिखने में। साथ में कृष्ण के परम सखा भी है, वो भाई भी है और परम सखा है, मित्र है। साथ में वो कृष्ण के मंत्री भी हैं, मतलब मंत्रालय में मंत्री भी हैं, वो उनके सभा में मंत्री भी हैं। बहुत बुद्धिमान हैं, उनकी मंत्रणा जो है वो बहुत उपयोगी है। और खाना पीना बैठना उठना बातचीत करना सोना शिकार खेलना, ये किसी भी गतिविधि में उनके साथ ही उद्धव जी हैं। तो किसी भी स्तर पर अगर आप सोचेंगे, उद्धव जी एक बेस्ट पोजीशन में हैं, हर तरह से मोस्ट वीवीआईपी पर्सन है ना। मतलब ऑफिस में भी बड़े पद पर है उनके साथ, घर पे भी बड़े पद पर है, आना जाना खाना पीना रहना गप्पे लड़ाना हंसी मजाक, इतना भगवान के क्लोज और मथुरा में कोई था नहीं। तो अगर आप गोपियों के बारे में सोचेंगे ना, तो गोपियाँ कैसी हैं, भगवान अभी वृंदावन छोड़ के गए हैं और गोपियाँ यहाँ पर व्याकुल हैं भगवान के लिए और तड़प रही हैं कि भगवान को कब मिलेंगे। और जब वृंदावन में थे और मिलते भी थे गोपियाँ भगवान से, तो कब मिलते थे, रात के समय। दिन भर उनको इंतज़ार करना पड़ता था कि रात कभी होगी तभी हमारा मिलन होगा। दिन भर तो गैया चराते हैं, ग्वाल बालों के संग खेलते रहते हैं, तो वो इंतज़ार करते रहते थे कभी सूर्य का अस्त होगा और हमारा टाइम कभी शुरू होगा। लेकिन उद्धव जी का कैसा है, दिन रात भगवान के साथ है, दिन भी और रात भी, जब चाहे तभी एंट्री है उनके लिए, कोई बंधन नहीं है, कोई संकोच नहीं है। तो एक तरह से जिनके लिए गोपियाँ दिन रात तड़प रही हैं, उनके लिए वे उद्धव के लिए दिन रात उपलब्ध हैं। तो क्या लगता है हमें कि गोपियों से भी श्रेष्ठ पोजीशन में है वो, ऑल टाइम अवेलेबल, कृष्णा इज ऑल टाइम अवेलेबल। तो ऐसे गोपियां वृंदावन में तड़प रही हैं, सब ब्रजवासी तड़प रहे हैं कृष्ण छोड़ के चले गए। और मथुरा उस समय भी वृंदावन के पास ही था, ऐसा नहीं कि आज ही पास में है, आज भी 11 किलोमीटर है, तो उस समय में भी उतना ही होगा शायद, ज़्यादा बहुत, लेकिन इन प्रिंसिपल बहुत पास में था वो, कभी भी कोई रथ ले लिया तो तुरंत जाके आ सकते हैं। गोपियाँ तो वैसे मथुरा में जाकर वो दही भी बेचती थी और सुबह जाकर शाम को लौट के आती थी, इतना पास में था वो। लेकिन फिर भी कृष्ण जब भी मथुरा गए तो कृष्ण को कभी मिलने गई नहीं मथुरा गई वो। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कृष्ण का आदेश नहीं था कि आओ, इसलिए वो इतना पास में होने पर भी कभी भी गई नहीं। ये एक प्रेम का बहुत सुंदर लक्षण है, जब निस्वार्थ प्रेम होता है ना, तो आपके मन में कितना भी विचार आए कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब तक जिस पर प्रीति करते हैं उसके मन में ऐसा विचार नहीं है तो नहीं करते। सच्चे प्रेमी ऐसा नहीं करते हैं। सच्चे प्रेमी केवल वो करते हैं जो जिस पर प्रीति करते हैं उसके उसको अच्छा लगे, और मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे इसकी कोई परवाह नहीं करते। वो ब्रजवासी इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि ब्रजवासी भगवान पर ऐसा प्रेम करते हैं कि केवल भगवान के ही हित का, भगवान के ही आनंद का, भगवान के ही सुख का। तत् सुख सुखित्वम कहते हैं उसको, तत् सुख सुखित्वम। ये तत्व जो है ये ब्रजवासियों का मूलभूत स्थायी भाव है और इसी पर वो जीवन जीते हैं, चाहे उनको कितना भी कष्ट हो, पहाड़ों जैसा कष्ट हो, फिर भी वो नहीं करेंगे जो उनको अच्छा लगे और कृष्ण की आज्ञा न हो। इसलिए उनको कभी भी जाकर गोपियों को कृष्ण को मिलना संभव था, लेकिन वो कभी भी स्वयं मथुरा नहीं गए, कहीं भी उल्लेख नहीं है। तभी सीन ऐसा है कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए हैं कंस को मारने के हेतु, और परसों आऊँगा ऐसे बोल के गए हैं, है ना, शीघ्र आगस्य, मैं अभी बहुत जल्द ही आऊँगा, आप चिंता मत करना, आप वेट करो मेरे लिए। उधर श्री रामा को बताया है कि अरे, उन्होंने कहा तो मैं देखो तुम जा रहे हो, पहले पूछा कहाँ जा रहे हो, अचानक कहाँ जा रहे हो, तो बोले मैं ऐसे जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा। तभी कहाँ पर थे वो, भांडीर वन में एक वटवृक्ष के पास में खड़े थे। बोले आप जा रहे हो तो मैं यहीं खड़े रहूँगा और जब तक तुम लौट के नहीं आओगे तो मैं यहीं खड़े रहूँगा। ऐसा ना हमारे हिंदी फिल्मों में डायलॉग होता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ये तो केवल कहने के लिए होता है, कुछ दिन के बाद में उसका सब संबंध टूटकर दूसरा विवाह हो जाता है। और डायलॉग क्या पिक्चर में लिखा हुआ है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मैं आपका इंतज़ार करती रहूँगी। लेकिन ये सब बातें ब्रज में सच है, हमारे भौतिक दुनिया में पिक्चर में केवल भूल भुलैया है। और अभी उधर श्री रामा खड़े रह गए भांडीर वट में, भगवान तो आए नहीं, हम जानते हैं ना, 2 दिन के बाद क्या, 20 दिन के बाद भी नहीं आए, 200 दिन के बाद भी नहीं आए, 100 साल तक नहीं आए, इमेजिन। और तब तक वो खड़े हैं, तो हमारे जो मुंबई के लोग हैं वो पूछेंगे खाना पीना बिना खाए कैसे खड़े हो गए 100 साल, इज नॉट पॉसिबल, ये सब कपोल कल्पित कथाएँ हैं, इसमें कोई सचमुच है नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, एक दिन आदमी रहेगा, 2 दिन रहेगा, बाद में खाना खाएगा बैठेगा। वो लोटा बाबा भी ऐसे ही थे, वो गोवर्धन के किनारे में मिले, बोले अरे कहाँ जा रहे हो, आज मेरा टर्न है, आज लंच मेरे घर पे आने वाला है, हमारे पिकनिक के लिए जो भोजन है वो मेरी मैया बनाने वाली है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि मैं आ रहा हूँ, आप रुको परसों आता हूँ मैं और आपका भोजन ले लेता हूँ सबके साथ। तो उनका भोजन भी कभी लेने का समय नहीं आया और भगवान लौट के नहीं आए। अभी भगवान को खबर मिल रही है कि गोपियाँ बहुत व्याकुल हैं, बहुत तड़प रही हैं, और बलराम जी भी जाके आए हैं, और भगवान बलराम जी ने खत दिया है, लेटर दिया है माता पिता को, गोपियों को, ग्वाल वालों को, सबको मैसेज दिया कृष्ण के विषय में, और कहा कि वो जल्दी ही आएंगे। लेकिन जल्दी ही आएंगे मैसेज देने के बाद कृष्ण तो गए नहीं, और फिर अभी कृष्ण बलराम जी को बोल रहे हैं कि आप एक बार और जाओ और थोड़ा सा सांत्वना दे के आओ। तो बलराम जी बोल रहे हैं कि देखो मैं गया था आपके कहने पर और आपने जैसा किया वैसे बताया सब मैंने किया, लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि आप आओगे और आप तो गए ही नहीं, तो वो दूसरी बार जाऊंगा तो वो हाउ दे विल बिलीव मी, वो कैसे मुझ पर विश्वास करेंगे कि पहली बार तो ऐसे ही कह के गए थे तो आए नहीं, तो मेरा जाना तो बेकार है। मतलब लॉजिकली अगर देखेंगे तो मेरा जाना वहाँ पर कोई काम का नहीं है। तो फिर उद्धव जी को बुलाया, बोले उद्धव जी तुम जाओ, और पूरा खत वत लिखे दिया माता पिता को, गोपियों को, सबको खत दिया लिखे, और आदेश दिया कि जाओ उनको सांत्वना करो, उनको दिल को बहला दो। तो आपको पता होगा ना कि हम लोग डॉक्टर लोग कभी कॉल आता है ना रात को बीच में विजिट करने के लिए कि फलाना घर में मेरी मम्मी जो है वो सुबह रात को बाथरूम में उठी थी तो गिर गई बाथरूम में, अभी तब तक बेहोशी है, उठी नहीं रही है। तो हम दो चार प्रश्न फ़ोन पर पूछते हैं, क्या वो पसीना आ रहा है क्या बहुत, और क्या मुँह में झाग आ रहा है क्या, ऐसे कुछ पूछते हैं, पर मन में अपना अंदाज लगा देते कि ये तकलीफ होगी उनको, हो सकता हार्ट अटैक होगा। तो अपना विजिट बैग में हार्ट अटैक की दवाई वगैरह लेते हैं और सब कुछ प्लान करके आते हैं, रास्ता में भी सोचते हैं कि अभी क्या करना है उसके लिए, है ना। दिस इज हाउ जनरली थिंग्स वर्क। वैसे ही भी इनको भी भेजा जा रहा है कि कोई बड़ा समुदाय है वो बड़े विरह के दुख में है और उनको सांत्वना देना है, तो आदमी सोच के जाएगा ना कि क्या करूँगा। और उद्धव जी क्या है ना, बृहस्पति से पड़े हुए हैं, तो उनको योग का भी ज्ञान है, उनको हर चीज़ का ज्ञान है, दुख निवारण कैसे करना चाहिए, कौन सी क्रिया करने से मन शांत हो जाता है, अगर ज़्यादा आसक्ति किसी से है तो उसको छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे दिव्य ज्ञान उसको पता है, बड़ा पंडित है वो। तो वो ऑन द वे, जैसे डॉक्टर विजिट पे जा रहा है वैसे वो ऑन द वे सब प्लानिंग कर रहा है मन में कि गोपियों का रोग उसको कृष्ण ने बता दिया है कि बड़े विरह में है, ऐसे ऐसे रोती रहती हैं, खाना पीना नहीं खाती है, और जनरली ये साइकेट्रिस्ट के पास में ऐसा होता है, साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं कि व्यक्ति खाना ही नहीं खाता है, रात को जगते रहते हैं, दिन में भी सोता नहीं है, रोते रहता है, बुखार आता है बीच में, उल्टियाँ भी करता है, आँखें लाल लाल होती है, ऐसे सब वर्णन होता है ना। तो वो मन का विकार होता है, मन में बहुत दुख है, कोई व्यक्ति चला गया है। तो वैसे उद्धव जी प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको मैं योग सिखाऊंगा, है ना। योग से क्या होता है, मन स्थिर हो जाता है, ब्रेथ कंट्रोल करने से मन शांत हो जाता है। अगर कोई किसी का मन बहुत दुखी है तो कई प्रकार के प्राणायाम योग करेंगे तो मन शांत हो जाता है, एक प्रकार से स्थिर हो जाता है, ज़्यादा विचलित नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है या उद्वस्त नहीं होता है, कंट्रोल में रहता है, सम भावना में रहता है। तो ये सारी योजना मन में बनाकर कौन सा स्पेसिफिक प्राणायाम, स्पेसिफिक कौन सा योग ध्यान में सिखाऊंगा, ये सब सोच के जा रहे हैं। और जब भी पढ़े, उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास है कि मैं ये काम कर पाऊंगा, कृष्ण के इच्छा के अनुसार उनके प्रियजनों के मैं सेवा करके आऊँगा, अच्छी तरह से उनको संतुष्ट करूँगा, बड़े आत्मविश्वास से जा रहे हैं। और जब वो ब्रज में पहुँचे तो कहते हैं, उस समय बहुत बड़ा लंबा वर्णन है, अभी पता नहीं एक घंटे में कितना होगा, कोशिश करता हूँ। संध्या के समय पहुँचे वो, जब ही गायों का दोहन हो रहा था, सब गोपियाँ गायों का दोहन कर रही हैं, और वो गाय का जब दूध निकालते ना, तो आप लोगों को कितने लोगों ने देखा है गाय का दूध निकालते हुए, है ना, आवाज़ कैसे आता है उस समय, ऐसे हर एक के बर्तन में वो दूध जब गिरता है ना तो उसका एक अलग आवाज़ आती है, बहुत मधुर आवाज़ आती है, वो बहुत सुंदर ध्वनि होती है। तो पूरे ब्रज के वातावरण में सब जगह ये आसमान तक ये आवाज़ गूंज रही है कि गोपियाँ दूध निकाल रही है। तो उससे वो बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि एक संगीत सभा होती है उसमें बहुत सारे वाद्य बजाते हैं तो एक अलग प्रकार का आनंद होता है, लेकिन जब नैसर्गिक होता है ना, कभी जब आप समझो अभी जंगल से गुजर रहे हो सुबह के समय, तो यहाँ से कोयल बोल रही है, वहाँ से मोर बोल रहा है, वहाँ से तोता बोल रहा है, वहाँ से और कुछ बोल रहे हैं, तो एक सुंदर एक संगीत सभा होती है उनकी अपनी सुबह की। अब हिमालय में जाओगे ना कभी, तो ऐसा समय है 4 से 4:30 बजे तक एक पक्षी का ग्रुप बोलेगा ऐसे ही चलता रहेगा आधा घंटा, फिर वो अपने आप टाइम पे बंद हो जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे कोयल वो चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद में और कोई पंछी आएंगे, चिक 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 करेंगे, चिक 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 करेंगे। ऐसे आपको लगेगा कि बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारा संवाद हो रहा है, और वो सुबह का जो संगीत सभा होते हैं ना, वो सुनने में इतना इतना मन को शांति प्राप्त होती है, कोई जप में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है। वो सुनने के लिए हम जल्दी उठ के बाहर गैलरी में बैठ जाते हैं, और यहाँ से गंगा जी की आवाज़ चल रही है बहुत सुंदर, कंटिन्यूस 24/7 म्यूज़िक गंगा जी के प्रवाह की हो रही है, वो हिमालय से गूंजती हुई वापस आ रही है, और उसमें अलग अलग पंछियों की म्यूज़िक भी ऐड हो रही है। लेकिन ये जो अद्भुत ध्वनि थी गाय के दूध बर्तन में गिरने की, उसकी संगीत के अनुभव को देखकर बहुत ही वो भाव विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए। ही वॉज इन एक्सटेसी। फिर थोड़ा आगे चले गए तो देखा कि कुछ गोपियां यमुना किनारे बैठकर ध्यान लगा रही, तो उनको अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इनको बेसिक योग का ज्ञान है, तो मुझे सिखाने में डिफिकल्टी नहीं होगी। समझे आपको कि जो योग मैं सिखाने का प्लान कर रहा हूँ उसमें सीधे बैठना, सांस लेना, आंख बंद करना, ध्यान लगाना, ये उनको ऑलरेडी अभ्यास है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो वो भी उनको कुतूहल था मन में कि क्या कर रही है, क्या ध्यान कर रही है, कौन सा मंत्र जप रही है। तो वो बाकी पूछते हैं कि आप क्या जप कर रही है, क्या ध्यान कर रही है। तो जो उत्तर उन्होंने दिया गोपियों ने, वो सुनकर उद्धव जी, अभी कैसे कहें आपको, लोकल लैंग्वेज में बताएं तो उनका हार्ट डिस्क क्रैश हो गया। मतलब जो भी उनका दिमाग है, बुद्धि है, ज्ञान है, एक प्रकार की योजना है, वो पूरा ना वो उस उत्तर से फेल हो गया। जैसे आप जा गए हो हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट देने के लिए, हाँ आप गए हो ये सोचकर कि हार्ट अटैक होगा, तो सारी दवाइयाँ सब आप लेके गए हैं, अब बाद में पता चला कि पेट में दर्द है, तो अब यह क्या करेंगे, वापस घर जाना पड़ेगा दवाई लाने के लिए। क्या आप सोच के आए थे कि हार्ट अटैक होगा? तो वैसे ये कुछ सोच के आए थे, सारा चीज फेल हो गया उस समय। उन्होंने क्या जवाब दिया, कृष्ण बहुत टेढ़े थे। ठीक है, कैसे टेढ़े? वो ऐसे 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 होते ना, यहां पर नहीं है कृष्ण, इधर भी नहीं है, एक गर्दन ऐसे टेढ़ी है, मुरली बजा रहे, एक कमर टेढ़ी है, और एक पैर भी टेढ़ा करके खड़े हैं। असल में उनको त्रिभंगी कहते हैं, तीन जगह पर शरीर को भंग देकर खड़े हैं, इसलिए त्रिभंगी, त्रिभंग सुंदर कहते हैं उनको, और लोकल भाषा में क्या कहते हैं, टेढ़े। तो वो कहते हैं वो बड़े टेढ़े थे, और हमारा हृदय बहुत सरल था, यानी स्ट्रेट, हमने उनको अपने हृदय में बसाया, और क्योंकि वो टेढ़े थे इसलिए हमारा हृदय हमने भी टेढ़ा कर दिया उनको एडजस्ट करने के लिए। ये सब बहुत सुंदर भावना है, ऐसा नहीं कि हार्ट ऐसा टेढ़ा हो गया, लेकिन वो कह रही है कि ये इतने टेढ़े थे कि हमने भी उनको बसाने के लिए अपने हृदय को भी टेढ़ा कर दिया, अभी ये चले गए हैं हमको छोड़कर, तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि अभी इतने ये क्या कहते हैं क्रूर प्रेमी हैं, हम उन पर प्रेम करते हैं, उसकी उनको परवाह ही नहीं है, चले गए, वो भी वादा किया वापस लौट के नहीं आए, हमारी परवाह ही नहीं उनको, तो हम भी चाहते हैं कि उनको हृदय से निकाल दे बाहर, इसलिए हम ध्यान कर रहे हैं कि उनको निकाल दे हृदय से। तो उद्धव जी क्लीन बोल्ड क्यों हो गए उधर? इसका कारण यह है कि उन्होंने वो योग सीखा था जो कृष्ण को हृदय में बसाने के लिए होता है। आपको समझ में आया कि अक्सर हमारे हृदय में कृष्ण हम नहीं देख पाते हैं, होने पर भी दिखाई नहीं पाते हैं, तो हम योग करते हैं क्योंकि वो परमात्मा का जो चतुर्भुज स्वरूप है उसको हम दर्शन कर सके, हृदय में उनको अनुभूति कर सके, हृदय में उनको बसा लें, इसलिए योग करते हैं। ये उल्टा वाला योग जो बसे हुए हैं उनको निकालने वाला योग, तो उनको कभी मालूम नहीं था, ना सीखे थे वो, और गोपियां इसलिए ध्यान कर रही थी कि वो बसे हुए कृष्ण को हृदय से निकाल दें। तो उसी समय उद्धव जी का सारा जो बुद्धि थी वो पूरी तरह से तितर बितर हो गई, अभी करूं क्या मैं, इतना प्रेम, और ये कहते हुए भी मैं तो ऐसे ही, मैं तो थोड़ी प्रेमी हूं कृष्ण का, लेकिन वो कृष्ण के प्रेम में जो नाराज है या बहुत विरह में व्याकुल है, जो तड़प रहे हैं, वो ऐसे भाषा बोल रहे हैं, तो उनको सब भाव समझ में आ रहा था उनका, और बोल भी ऐसे रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको एक्चुअली, एक तरह से कि ये कौन सा योग है। तो एकदम वहाँ से ही वो दिमाग उनका तितर बितर हो गया। फिर आगे जाकर उन्होंने नंद बाबा के दर्शन किए, उनको खत दिया, उन्होंने क्षेम कुशल पूछा, इन्होंने बताया, ग्वाल बालों से मिले, गैयाओं से मिले, और फिर गोपियों से मिलने का समय आया। तो जब गोपियों को मिलने का समय आया तो वो गोपियों से मिले नंदगांव में, उन्होंने बताया कि आपके लिए संदेश है और आपकी भी बात मैं सुनना चाहता हूँ। तो गोपियों ने कहा कि ऐसे ये पब्लिक जगह पे आपसे हम बात नहीं कर सकते, हमारी बात जो है वो एकांत में होगी, अगर आपको बात करनी है तो हमारे साथ आपको जंगल में बीच जाना पड़ेगा। तो ठीक है, आज भी हम वो स्थान है वृंदावन में, उसको कहते हैं उद्धव क्यारी। क्यारी का मतलब है बैठने की जगह, एक पत्थर भी हो सकता है, उसको भी क्यारी कह सकते हैं। तो एक बार 1992 में हम लोग उद्धव क्यारी गए थे, उस समय बहुत बड़ा जंगल था उधर, आज पूरा सीन चेंज हो गया है, लेकिन 1992 में बहुत ही सघन जंगल था, वो बहुत जंगल था, और जंगल भी था ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे, सब कांटक के पेड़ थे, एवरीथिंग बबूल सब जगह, और पानी भी भरा हुआ था, वर्षा भी हुई थी, अकाल वर्षा हुई थी, तो जहाँ जहाँ पानी भरा था उस पानी के छोटे छोटे जगह पर 50 कांटे थे, और पहले हम लोग चप्पल पहन के चल रहे थे, चप्पल के अंदर से घुस रहे थे कांटे सब। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप चप्पल उतारो तो कम से कम आपको थोड़ा महसूस होगा, तो आप बाजू से चल सकते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर का अंतर था, तो कम से कम हमको 2.5 घंटे लगे पहुंचने के लिए, क्योंकि हर पैर पर कांटे, फिर वो पैर पर रखना, कांटे निकालना, दूसरा पैर, फिर उसमें कांटे, फिर उसका कांटा निकालना, तीसरा पैर, ऐसा करते करते गुरु महाराज और सब लोग हम 2-2.5 घंटे के बाद में वहाँ पहुँचे। तब तक तो सैकड़ों कांटे पैर में घुस चुके थे, पर वहाँ जब पहुँचे तो सब लोग जमीन पर बैठ गए, एक छोटे कांटे निकाल रहे हैं, तो पास टाइम फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद में फिर सब लोग स्थिर हो गए, तो महाराज ने कहा ओके एवरीबडी फाइन, महाराज के भी पैर से कांटे निकाले गए, फिर महाराज जी बैठे, उन्होंने वहाँ पर कथा सुनाई जो अभी हम लोग कहने वाले हैं। तो वहाँ पर उन्होंने उद्धव जी को एक पत्थर के आसन पर बिठाया, और फिर उद्धव जी ने उनको खत जो है कृष्ण का वो पढ़ के सुनाया, और गोपियों ने वो सुना, ऐसा निर्विकार चेहरे से सुना, समझो अभी आपको कोई मैसेज दिया जा रहा है और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है जो भी आपको दिया जा रहा है ना, जैसे हरिप्रिया माता जी आज आपको रात को 1 बजे ड्यूटी पर बुलाया है और सुबह 4 बजे तक आपको ये काम करने, आप ऐसा क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है आपको, क्या टाइम क्या बोल रहे हैं, काम क्या बोल रहे हैं, कुछ कनेक्शन है क्या, सोने का समय है ऐसे, लेकिन आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आप चुपचाप ऐसे निर्विकार चेहरा होके सुन रहे हैं। ऐसे गोपियों को ऐसा सब बताया जा रहा है कि मैं जल्दी आऊँगा, मैं जानता हूँ आप बहुत दुखी हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे कुछ काम है वो निपटा के मैं जल्दी आऊँगा। तो उनको लग रहा है कि सब बेकार की बातें क्यों बता रहे हो, आते तो नहीं हो, खाली मैसेज ही भेजते रहते हो। और जिनका अभी हमारा और कृष्ण का इतना प्रेम नहीं, लेकिन गोपियों का इतना प्रेम था और उनको अधिकार भी था उस पर, प्रेमी पर क्रोध करना या प्रेमी पर ताने मारना या प्रेमी पर कुछ और अच्छा बुरा बोलना, निर्विकार चेहरे से सब कुछ सुन लिया। और फिर जब उनकी बोलने की बात समय आया, उनके बोलने का या कुछ रिस्पांस देने का, तो उन्होंने ना इस प्रकार से उत्तर दिया उनको, इस प्रकार से वहाँ पर गतिविधि हुई कि उसका वर्णन करना किसी भी साधु या किसी भी कवि को मुमकिन नहीं है। कुछ गोपियाँ ऐसे भाव में आ गई कि वो कृष्ण की तारीफ ही की जा रही है, कुछ गोपियाँ छाती पीट पीट कर रो रही है, कुछ गोपियाँ जमीन पर लेट कर विलाप कर रही है, कुछ गोपियाँ क्रोध में आकर उस कृष्ण को ताने दे रही है, अपशब्द उच्चारण कर रहे हैं। फिर वही गोपियाँ, हमने कृष्ण के विषय में अपशब्द उच्चारण किया इसलिए अपने आप को क्या कहते हैं ना, गिल्टी, ऐसा अपराधी समझकर फिर छाती पीट कर रो रहे, अरे मेरे प्रिय कृष्ण के बारे में ऐसे कैसे मैंने बोला, हाउ कैन आई स्पीक लाइक दिस। फिर बेहोश हो रही है, फिर कुछ गोपियाँ बेहोश गोपियों को होश में ला रही है, फिर वो होश में आते ही फिर उनका कुछ चालू है बोलना, कोई पुरानी यादों में नाच रही है कृष्ण की याद में, ऐसे एक विचित्र प्रकार का रिस्पांस उनको वहाँ पर दिखाई पड़ा। सभी गोपियाँ अलग अलग प्रकार से रिस्पांस दे रही है, और वो देखकर उद्धव जी क्या कहते हैं ना उसको, ही कुड नॉट कम्प्रिहेंड, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या कहना है उनको। इतनी प्रेम की गहराई है, इतना प्रेम का गहरा संबंध है कि अलग अलग प्रकार के भावनाएं वहां पर प्रकट हो रही है, और उद्धव जी केवल सखा प्रेम के विषय में अवगत थे, है ना, तो मित्र है ना कृष्ण के। तो सखा में कैसा होता है, कभी मुंह में भी खाना निकाल के खा लिया, कभी बैठ के भी प्लेट से भी खा लिया, कभी हंसी मजाक कर लिया, कभी कुछ कुछ बकवास कर ली, कभी खेलने गए, कभी घूमने गए, कभी बात किया, कभी हंसी मजाक किया, वो एक स्तर पे होता है ना, इट्स ओके। कभी कंधे पे चढ़ गए, कभी हो सकता है कभी एक स्लैप भी कर लिया प्रेम से। लेकिन ये जो रिश्ता था ना, इसके बारे में उनको अनुभव नहीं था। दूर से देखा था कृष्ण और माता पिता का संबंध वगैरह, और तब कृष्ण का विवाह भी नहीं हुआ था, कृष्ण भी मथुरा में है, तो मथुरा से उद्धव जी आए थे। तो ये सब देखकर उद्धव जी पूरी तरह से हैरान हो गए। पहली बार तो केवल क्लीन बोल्ड हो गए थे, अपने आप को संवारने के मूड में थे, लेकिन ये देखकर उद्धव जी समझे कि मैं इनको क्या सांत्वना दूं। एक रो रही है, एक गाली दे रही है, एक बेहोश हो रही है, एक नाच रही है, अभी मैं क्या करूं उनको, एक प्रकार का इलाज नहीं है ये। तो वो निरुत्तर हो गए, एक तरह से स्तब्ध हो गए, मतलब हेल्पलेस हो गए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस नतीजे पर आ पहुंचे वो। इसके पीछे बड़ा रहस्य है कि कृष्ण ने उनको क्यों भेजा, क्योंकि बृहस्पति के द्वारा विद्या प्राप्त करके कृष्ण पर अपनी तरह से अपनी अपने स्तर पर प्रेम करके वो भी एक परमोच्च अवस्था में थे, ऐसा नहीं कि वो साधारण भक्त थे भगवान के, साक्ष्य रस के ऐश्वर्य भाव के परमोच्च भक्त थे वो। हर प्रकार का भाव दो टाइप का होता है, एक ऐश्वर्य वाला और एक माधुर्य वाला। उद्धव जी को मथुरा में होने के कारण कृष्ण भगवान ये पता था, लेकिन भगवान उनके मित्र भी थे, और यहाँ पर जो ग्वाल बाल है ना वो भी भगवान के मित्र हैं, वसुदामा, सुदामा, यहाँ का सुदामा, पोरबंदर का नहीं, वृंदावन का, फिर उज्ज्वल, सुभल और अंशु, ऐसे बहुत सारे भगवान के सखा हैं। वो कोई जानते नहीं कि भगवान भगवान है, वो भगवान को केवल अपना ग्वाल बाल मित्र मानते हैं, बस परम सखा मानते हैं, भगवान होने का ज्ञान नहीं उनको। लेकिन उद्धव जी, क्योंकि वो मथुरा में है, वृंदावन वाले नहीं है, वो मथुरा के निवासी है, तो वहां पर ऐश्वर्य का प्रभाव है, तो उनको ऐश्वर्य में भगवान के विषय में ज्ञान है, लेकिन वो भगवान जो भगवान है वो उनके परम मित्र भी हैं, और उनका ऐसा रिश्ता है कि उनका झूठा भी खा सकते हैं, खींचकर भी खा सकते हैं, उनके साथ खेलने भी जा सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, तो उनको इस प्रकार के प्रेम का अनुभव था। लेकिन ये जो प्रेमी प्रेमिका का अनुभव हो भी इस प्रकार का, बिल्कुल भी उनको अनुभव नहीं था। तो उनको क्यों भेजा गया था, क्योंकि अपने स्तर पर, अपने प्रेम के स्तर पर वो क्या कहते हैं, पराकाष्ठा के स्थिति में पहुंच चुके थे, इट मीन्स ही हैज अचीव्ड द मैक्सिमम, परमोच्च अवस्था प्राप्त की थी। और कहते हैं कि अभी मैं तो नहीं उस बात को मानता, लेकिन कहते हैं लोग कि कुछ कुछ उनको अपना घमंड भी था, एक तो बृहस्पति के वाला से प्राप्त किया हुआ ज्ञान का एक थोड़ा सा घमंड था, कृष्ण के निकट होने का एक घमंड था, कृष्ण का मंत्र होने का एक घमंड था, कृष्ण जैसे दिखते हैं उसका एक घमंड था, ऐसे थोड़ा थोड़ा सब जगह पे था। और कृष्ण को लगता था कि मेरे इतने परम प्रिय सखा को ऐसा घमंड अच्छा नहीं है, तो उनको वृंदावन भेजना चाहिए कि प्रेम कैसे किया जाता है। उनको लग रहा था कि उनका जो प्रेम है वही श्रेष्ठ है, वो जिस प्रकार से भगवान के निकट है, भगवान को जानते हैं, भगवान पर उनका प्रेम है और उनका संबंध है प्रेम का, वो समझते थे कि वही सर्वोच्च है, उसके पीछे कुछ है नहीं। तो वही लोकल लैंग्वेज में बताए ब्रज की, तो भगवान ने उनको गोपियों की पाठशाला में भेजा, जो बृहस्पति की पाठशाला में वो अभी स्नातक हो चुके थे, ग्रेजुएट, तो उनको आगे की भी कुछ पढ़ाई है, आगे की भी कोई ज्ञान है, आगे भी कोई डिग्री होती है प्रेम में, वो समझाने के लिए उनको ऐसे ही भेज दिया उनको। तो अभी जब गोपियों का ये भाव देखा, तो सारा उनका जो भी कुछ था वो चकनाचूर हो गया। उनको मन में लग रहा था कि मैं इतना प्रेमी हूं, बोले नहीं, मेरा कुछ भी प्रेम नहीं है इनके सामने, तो मेरा प्रेम इनके सामने, मैं प्रेम क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब तक समझ रहा था कि मैं प्रेमी हूं, प्रेम मैं जानता हूं, इनको देख के समझ में आ रहा है कि मुझे प्रेम की व्याख्या ही पता नहीं है, प्रेम किसको कहते हैं, ऐसा अद्भुत प्रकार का प्रेम का वर्णन क्या कहते हैं, प्राकट्य कर रही है। और फिर मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, ये भी कहीं चला गया बात मन में से, क्या फायदा है बृहस्पति का शिष्य होकर, इनको जो प्राप्ति है प्रेम की वो मैंने कभी सीखा नहीं बृहस्पति से, व्हाट इज द यूज, ऐसा लगा उनको। और मुझे लगता है कि मैं कृष्ण के बहुत निकटतम हूं, मेरे इतना कृष्ण के भाव से और शरीर से निकट कोई नहीं है। और यहां पर तो देख रहा हूं कि मैं शरीर से निकट हूं, लेकिन भाव से इतने निकट ये गोपियां हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने। इतना सान्निध्य सामीप्य उनको प्राप्त है कृष्ण के साथ, तो मैं किस प्रकार की तुलना नहीं कर सकता उनके साथ। और शरीर से इतना दूर इतने दिन तक होने पर भी कृष्ण से कितने पास में है ये सब विचार उसके मन में चल रहे हैं। वो कुछ भी वही बोल रहा है, अंदर मन में विचारों का मंथन चल रहा है उनका, अनंत विचारों का मंथन चल रहा है। क्या उपयोग है मैं कृष्ण जैसा दिखता हूं, मेरा रंग कृष्ण जैसा है, क्या लाभ है उसका? उतना प्रेम तो नहीं है जितना गोपियों को है, इतना दूर रहकर भी इतना प्रेम कर देंगे कृष्ण से। अब ये सब बातें जो है ना, वो कहीं लिख नहीं बताई जा रही कि हमको बहुत प्रेम है कृष्ण से, कुछ नहीं बोल रही है वो। ये केवल हृदय से हृदय की अनुभूति हो रही है, जो भी हो रहा है उससे हृदय में अनुभव हो रहा है। बड़ा अद्भुत जगह है वो, मैं कहता हूँ आपको, वो जगह जो है ना, वो इतनी सूक्ष्म और इतनी तीव्र और इतनी उत्कट जगह है, वेरी वेरी इंटेंस प्लेस है वो। वहाँ पर जो भी कुछ हुआ है उसको समझना और सुनना भी बहुत मुश्किल है। हाउ वे कैन परसीव और कंप्रीहेंड वॉट हैज हैपेंड ओवर देयर, और एक दूसरे के हृदय में क्या क्या बीती है वहाँ पर, उद्धव के हृदय में क्या बीती है, उनके हृदय में क्या बीती है, वो कैसे कैसे भावनाओं का किल्लोड़ के बीच में उन्होंने अपने आप को प्रकट प्रस्तुत किया है। बहुत कठिन विषय है ये, फिर भी सारांश रूप में समझ सकते हैं कि उद्धव जी एक प्रकार से पूरी तरह से जीरो लेवल पे आ गए हैं हर चीज में। ज्ञान के रूप में बोलो, प्रेम के रूप में बोलो, हर चीज के अंदर वो समझने लगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और ये एक उच्च प्रकार का प्लेटफॉर्म है, ये जो लेवल है ना, आई एम नथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। जब तक आप समझते हो आई एम समथिंग, तब तक आप एवरीथिंग प्राप्त नहीं कर सकते हो। व्हेन यू थिंक यू आर समथिंग यू कैन गेट एवरीथिंग, बट व्हेन यू सी दैट यू आर नथिंग देन यू कैन गेट एवरीथिंग। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर उद्धव जी आ गए, न्यूट्रल लेवल, जीरो लेवल पे आ गए। अभी कैसा है ना, अभी जो ये ग्लास है, अभी इसमें पानी है, और आप में से किसी ने समझो मेरे लिए खीर लेके आए, समझो वो देना है मुझे, तो मुझे इस पानी को खाली करना पड़ेगा ना पहले, कि दूसरा पात्र है क्या, पात्र है नहीं तो फिर मुझे खिड़की से पानी खाली करना पड़ेगा। जब पूरा तरह से खाली होगा तो इसमें खीर आ सकती है, तो मैं खीर ले सकता हूँ। जब तक पानी है तब तक कैसे खीर लूँगा? बड़ी खीर बहुत बढ़िया है, बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम है, सर्वोत्तम है, लेकिन जब तक पानी है तब तक खीर मैं नहीं ले सकता। तो इसी प्रकार का भाव भक्ति में होता है, जब तक हम समझते हैं कि हम कुछ हैं तब तक भक्ति में कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। जब अपने आप को रीता करेंगे ना, सब खाली कर देंगे जो भी हम अपने आप को समझते हैं, तब फिर कृष्ण भक्ति में कुछ कुछ प्राप्ति होने की संभावना है। तभी गोपी अभी उद्धव जी को समझ में आया कि जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा गया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ, अयोग्य हूँ। कृष्ण ने मुझे उनको सांत्वना करने के लिए भेजा था, वो सांत्वना करने के लिए मैं कण का भी योग्य नहीं रहा। अब मुझे ये समझ रहे आ रहा है, जब मैं निकला था तब मुझे लगा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अब जब पहुँच के यहाँ पर सीन देख रहा हूँ तो अभी पूरा समझ में मुझे आया, अनुभूति के स्तर पर आई हैव रियलाइज्ड कि मैं इनकी सांत्वना में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उसने एक बात देखी जरूर उसमें, मैंने क्या क्या बताया, कुछ छाती पीट रही थी, कुछ बेहोश हो रही थी, कुछ रो रही थी, कुछ गुस्सा कर रही थी, कुछ ताने मार रही थी, कुछ क्रोध से कुछ अपशब्द उच्चारण कर रही थी, और कुछ नाच रही थी। यानी कुछ गोपियां कृष्ण के विषय में उनके आदान प्रदान की याद करके आनंद में जा रही थी, देवर रिमेम्बरिंग कृष्णा कि कृष्ण ने क्या किया हमारे साथ, वो यमुना किनारे हम लोग मिले, यमुना जी के अंदर मिले, वन में मिले, रात को मिले, बंसी बजाई, सब कुछ जब याद कर रहे थे तो बड़े अपने आप ही सांत्वना पा रहे थे वो, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, कृष्ण की याद और कृष्ण के विषय में हुई घटनाओं की याद जब वो अपने मुख से कर रहे थे तब वो अपने आप ही सांत्वना प्राप्त कर रहे थे और उनको तभी दुख नहीं हो रहा था। तो उद्धव जी ने इस बात को हेर लिया हाँ ये बात है, क्योंकि जब ये बोलेंगी कृष्ण के बारे में ना, तो अपने आप सांत्वना मिलेगी उनको। तो उन्होंने केवल सुना, सोचा अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, खाली सुनूंगा उनके मुख से। तो खाली उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त करते रहे, फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, फिर कहाँ गए, ऐसे ही प्रश्न करते रहे। और उसके उत्तर में गोपियों ने उनको पूरा ब्रज घुमाया, क्योंकि अभी अब मैं यहाँ बैठा हूँ हॉल में और मैं बता रहा हूँ आपको कि यमुना किनारे में आरती में कैसा होता है, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। लेकिन मैं कहूँगा आप मेरे साथ चलो और यमुना आरती अटेंड करो, फिर आपको एक अलग अनुभव आएगा। और वो अलग अनुभव आप लेंगे तब पता चलेगा कि प्रभु जी ने जब ये हॉल में बताया था तभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जब वहाँ गए ना तो उसके बहुत डायमेंशन हमको मालूम पड़े। तो गोपियों ने सोचा कि अभी हमको इनको जंगल में बिठा कर हम बता रहे हैं तो क्या क्या समझ में आएगा, उनको सब जगह लेके जाना चाहिए। देखो यहाँ पर हमने रास किया था, यहाँ पर हमने मुरली बजाकर उन्होंने हमको नचाया था, यहाँ से वो लुप्त तो हो गए थे और हम उनको यहाँ से वहाँ तक ढूंढ रहे थे, फिर वहाँ हमको मिले वो सब पूरा लोकेशंस के साथ में उनको टूर देना था, उनको यात्रा देनी थी। हमारी यात्रा कैसे होती है, एक यात्रा धाम दर्शक होता है और कभी 5,000, कभी 8,000, कभी 400, 500, 1,000, 1,100, ऐसे अलग लोग होते हैं, लेकिन हर समय पर एक वक्ता होता है और बाकी सब श्रोता होते हैं। हाँ हम नंदगांव जाएंगे, बसाना जाएंगे, गोवर्धन जाएंगे, सहा जमुना किनारे जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, सब जगह जा जाकर कथा करेंगे जितना हो सके उतना, लेकिन एक वक्ता होता है और बहुत सारे श्रोता होते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर करोड़ों वक्ता थे और एक ही यात्री था, ओनली वन यात्री, पिलग्रिम केवल एक ही था, बाहर गांव से आया था। और कथाकार हजारों गोपियां, करोड़ों गोपियां कथा कर रही है, क्योंकि हर एक अपने अपने एंगल से कथा को बता रही है कि रासलीला जब हुई तो मैं किस तरह से रासलीला को देखा, जब भगवान ने कालिया का दमन किया तो मैं उस पेड़ के पीछे थी तो मुझे कैसा दिखाई पड़ा, तो इसको अलग दिखाई पड़ रहा है, उसको अलग दिखाई पड़ रहा है, एक ही सीन है। तो हर गोपी ने हर चप्पे चप्पे पर जाकर उद्धव जी को 6 महीने तक यात्रा दिला दी। ऐसी यात्रा आज तक कभी इतिहास में नहीं हुई है, 6 महीने यात्रा चली है, 6 महीने में कण कण का स्थानों का दर्शन कराया और वहां पर क्या क्या हुआ वो सब उन्होंने वर्णन किया। हमारे रूप गोस्वामी मथुरा महात्म्य में लिखते हैं कि वे कैसे बताएं आपको, आपको क्या मालूम है, लाख मालूम है, लाख ना, लाख लैक्स, दशलक्ष, लखपति है ना, तो 6,600 लक्ष तीर्थ स्थान ब्रजभूमि में है, 6,600 लैक्स या तो मिलियंस होगा शायद, 66,000 लक्ष, 660 अब्ज, 660 बिलियन होली प्लेसेस रूप गोस्वामी बताते हैं कि ब्रज में है, वो भी एक नंबर है लेकिन वास्तविक ब्रज में अनंत, अनगिनत, इन्फिनिटी, इतने स्थान है जहां पर भगवान ने लीला किया है। अभी एक एक स्थान लुप्त होते जा रहा है तो हमको मेन मेन स्थान ही दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं कलयुग के प्रभाव से। उस समय तो कृष्ण भी विश्व में है मथुरा में और गोपियां भी है ब्रज में, उद्धव जी भी हैं, पूरा ब्रज अभी तक वाइब्रेंट है। ऐसे नहीं कि अभी 5,500 साल पहले की बात है, यहाँ का मंदिर गिर गया, अभी ऐसा कुछ नहीं है, एज इट इज एवरीथिंग इज देयर। और अभी अभी सब कुछ हुआ है, मानी सब कुछ फ्रेश है, तो कैसी कथा हो गई होगी। तो 6 महीने तक उद्धव जी ने केवल श्रवण किया और गोपियों के मुख से सारी कथाएं सुनी और गोपियों को क्या कहते हैं ना, सेल्फ हिप्नोसिस होता है ना हमारा, एक वैसे सेल्फ सांत्वना दे दिया उनको। और 6 महीने के बाद राधा रानी उनको बोलती है, अरे तुम्हारा वो कन्हैया तुम्हारी याद करता होगा, जाओ तुम जाओ, बेचारा सोच के आया होगा तुम कि 2 दिन में लौट जाओगे, 6 महीने हो गए, अभी जाओ। तो फिर वो लौट के गए मतलब एक बार से ताना दिया उनको कि तुम यहाँ पर आए तो वो तड़पता होगा वहां पर, मतलब हम यहाँ तड़प रहे उसको कोई परवाह नहीं है लेकिन तुम्हारे शायद तड़पता होगा, जाओ तुम जाओ। एक एक बात है ना, लग रही तीखी और टेढ़ी बात कर रहे हैं, कठोर बात कर, लेकिन उनके अंदर इतना गहरा प्रेम छुपा हुआ था, वो सारा प्रेम की अनुभूति उनको हो रही थी तब उद्धव जी को। और उद्धव जी है ना एक प्रकार से पूरा दिग्मूढ़, दिग्मूढ़ एक शब्द है मराठी इंग्लिश संस्कृत में, दिग्मूढ़ का मतलब है कि दिमाग तो बहुत है लेकिन अभी चल नहीं रहा है, कंप्लीट ऐसा क्या कहें, अभी समय एकदम, मैं समय जो अक्षत कर रहा हूँ ऐसा मतलब क्या हो रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एकदम पूरा दिमाग पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, सारी तर्क बुद्धि सारी प्रकार की विभिन्न प्रकार की बुद्धि जो है वो सब अभी फेल है पूरी तरह से, जो सामने चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, इम्पॉसिबल। इस प्रकार का उसका दिमाग हो गया था, बुद्धि उसकी इस प्रकार से भ्रष्ट नहीं कह सकते उसको, लेकिन क्या कहते ना, भाव विभोरता थी उसके अंदर, ओवरवेल्म्ड कंडीशन थी। एक ग्लास अगर है, इसमें अगर आप 2 लीटर खीर डालने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा, ग्लास तो भर जाएगा लेकिन वो बाहर बहते 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 इधर के टेबल के नीचे भी गिर जाएगा, वहां से भी बहेगा, ओवरवेलमिंग, उसको विभोरता कहते हैं, भाव की विभोरता, वो समेट नहीं पा रहा है, इतना भाव अंदर आ रहा है कि वो उसको झेल नहीं पा रहा है। ऐसे कुछ विचित्र अवस्था उद्धव जी की हुई। लेकिन ये भाव विभोर अवस्था में भी एक कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको आ रही थी कि ये गोपियां जो है ये भगवान के सर्वोच्च प्रेमिकाएं हैं, इनके प्रेम की कोई भी तुलना विचार या क्या कहते हैं कंप्रेहेंड नहीं कर सकता है, मतलब समझ नहीं सकता है, आकलन नहीं कर सकता है, इतना उनका अथाह सागर जैसा प्रेम है कृष्ण के ऊपर। और उस प्रेम को होने के लिए कृष्ण का सान्निध्य की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो होंगे तो ही प्रेम है, नहीं तो भूल गए, ऐसा भी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, वो रहे नहीं रहे हर प्रकार से उनके अंदर ऐसा तूफान जैसा प्रेम है कृष्ण के लिए, जो कोई झेल नहीं सकता है इतने प्रेम को, इतना प्रेम उनके हृदय में है कृष्ण के प्रति, ये उनको समझ में आ रहा था। और उस प्रेम की वजह से उनकी नम्रता और गहरी होती जा रही थी कि मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूं, ये भावना अनंत बार उनके मन में और गहराई में उमड़ रही थी। लेकिन जो पहले नम्रता निर्माण हुई उससे हजारों करोड़ों गुना अधिक नम्रता हर दिन उनकी बढ़ती गई। और कैसे ना, ये उद्धव की जर्नी है एक प्रकार से, उद्धव की जब निकला था वहां से तो जो मन की स्थिति थी और आज मन की क्या स्थिति है, ये पूरी यात्रा है, अंदर की यात्रा है, हृदय की यात्रा है उसकी, ही इज मेकिंग अ इंटरनल जर्नी। और उसका नतीजा क्या हुआ, उसके मन में एक विचार आया कि मैं इतना तुच्छ हूं इनके सामने और ये इतनी मेरे सामने महान है, अभी मैं एक ही चीज कर सकता हूं, इनके चरणों की धूल अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं कुछ अंश प्रेम का समझ सकता हूं, करने इनके जैसा प्रेम करना तो दूर की बात है, समझना इनका प्रेम का स्वरूप और गहराई और विस्तार और मात्रा मैं समझ पाऊंगा अगर ये मुझ पर कृपा करे, अपने चरणों की धूल दे दे। फिर उनके मन में और एक विचार आया कि अपने आप में इतनी महान प्रेमिकाएं होने पर भी ये गोपियां इतनी नम्र हैं, कृष्ण पर क्रोध भी करती हैं, उसको अपशब्द उच्चारण करती है, लेकिन बाद में इतने अपने आप को कोसती है कि मैं तो यक्कश्चित गोपी हूँ, मेरे को स्थान ही नहीं है, मुझे क्या अधिकार है ऐसे बोलने का और क्या कृष्ण से अपेक्षा करना, वो कृष्ण की मर्जी है, वो तो स्वतंत्र है, जब चाहे प्रेम करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है, हम तो उनके सेविकाएं हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसे नम्रता इतनी थी उनके ऊपर कि अपने आप को बहुत कोसती थी वो, तो उनको ये भी ध्यान में आया कि मैं इनके चरणों की धूल की इच्छा करूंगा तो मुझे देंगे नहीं चरणों की धूल, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इनके लिए मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, इनके लिए मैं कृष्ण का चचेरा भाई हूँ, इनके लिए मैं कृष्ण का मंत्री हूँ, इनके लिए मैं कृष्ण का सखा हूँ, इनके लिए मैं कृष्ण का निकट 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 का मित्र हूँ, साथ में बैठता उठता हूँ, इनके दृष्टि में मैं बहुत उच्च हूँ क्योंकि मैं कृष्ण के पास हूँ और ये कृष्ण से दूर हैं, तो समझ रही है कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं कितना महान हूँ, कितना श्रेष्ठ हूँ, तो ये भावना में जब वो मुझे देख रही है तो अपने चरणों की धूल मांगूंगा तो देंगे कैसे, बिल्कुल नहीं देंगे। उसके आगे की भावना देखो, वो कह रहे मैं भी उनको ऐसे मांग कर संकोचित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं समझो मैं अभी समझो किसी छोटी लड़की के पास गया और लड़की के पास गया और बोला बेटा मैं आपके चरणों की धूल चाहता हूँ, तो लड़का कितना संकोच में आएगा कि अरे प्रभु जी आप तो इतने बुजुर्ग हैं और अरे आपके चरणों की धूल मुझे लेनी चाहिए, आप तो मेरी चरणों की धूल मांग रहे, तो वो भागेगा ना बच्चा, अगर वो समझदार बच्चा होगा तो मैं उनको संकोच भी नहीं कराऊंगा ये पूछकर। कभी कभी कैसा होता है ना, कुछ चीज़ मांगने से देने वाले को संकोच होता है देने के लिए, तो हमको मांगना भी नहीं चाहिए, ये रिवाज है। तो मैं किसी भी तरह से इन गोपियों को संकोच दिलाने के लिए कुछ भी काम नहीं करूंगा। फिर और सोच रहे हैं कि इनके रज कैसे प्राप्त करें चरणों की, देखो कितना मन में आध्यात्मिक प्रगति हो रही है उसकी, कैसे रज की प्राप्ति कराऊंगा इनकी, रज तो लेना ही है क्योंकि मुझे इनका ये प्रेम का रहस्य अगर समझना है तो मुझे रज चाहिए ही चाहिए उनकी, उनकी कृपा से ही ये रहस्य भेद होगा और मैं इसको समझ पाऊंगा। और आज मुझे समझ में भी आ रहा है कि मुझे कृष्ण ने क्यों भेजा इधर, वो तो जानते होंगे कि मैं इनका सांत्वना करने के लिए बिल्कुल असहाय हूँ, बिल्कुल एकदम हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये उनको पता होगा, फिर भी मुझे क्यों भेजा। अब समझ में आ रहा है कि मुझे अपने प्रेम पर बड़ा घमंड था जो मुझे कृष्ण पर है, आज समझ में आया कि मेरा प्रेम कितना तुच्छ है इनके प्रेम के सामने। ये समझाने के लिए मुझे इनकी पाठशाला में कृष्ण ने, मेरे मित्र ने भेजा है, ये भी समझ में आ रहा है। गोपियों की महानता भी समझ में आ रही है, उनको पूछना भी नहीं चाहिए ये समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है पूछूंगा नहीं लेकिन रज तो चाहिए ही चाहिए, वो मिलनी ही चाहिए तो कैसे प्राप्त करूंगा। तो एंड में मन में निश्चय कर लिया कि मैं ये सारा काम करूंगा, लौट के जाऊंगा, कृष्ण को रिपोर्ट दूंगा, फिर यहाँ पर वापस आऊंगा, गोपियों से मिलने के लिए नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पर आकर तपस्या करूंगा और तपस्या करके मैं यहाँ पर तृण का पत्ता बनना चाहूंगा। क्योंकि उन्होंने 6 महीने की निरंतर यात्रा में एक चीज देखी थी और अनुभव भी की थी कि इन गोपियों को तृण के पत्तों पर चढ़ने में कोई संकोच नहीं। जब चल रही है तो कितने घास के पत्ते, हम लोग भी जीव में चलते हैं, कई जगह पर घास होती है ना, हम लोग आराम से चलते हैं, कोई चींटी आ गई बीच में, कोई मेंढक आ गया तो हम रास्ता बदलते, लेकिन घास के ऊपर तो आराम से चलते हैं क्योंकि तो घास चलने पर मरता नहीं है ना, दब जाता है फिर खड़ा हो जाता है, घास की विशेषता है। तो इन्होंने देखा कि घास के पत्तों पर, तृण के पत्तों पर चलने में गोपियों को कोई संकोच नहीं है, तो मैं ये तृण का पत्ता बनूंगा तो बिना संकोच मुझ पर चलेंगी, तो अनायास ही रज की प्राप्ति होगी। किसी के चरणों के रज प्राप्त करना होगा ना, उसका भी एक तरीका होता है, वो रज की प्राप्ति करते समय जिसकी रज आप ले रहे हो उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मन से भी और तन से भी, ऐसा पकड़ के उसको उसके चरण धोना और लेना, उसको बड़ा कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, मन में भी हो रहा है और तन में भी हो रहा है, वैसा नहीं होता है। अद्वैत आचार्य को भी सची माता को उनके चरणों की रज लेनी थी, लेकिन अद्वैत आचार्य सची माता को माता मानते थे तो कैसे वो रज देंगे उनको। तो जब भाव में एक बार अद्वैत आचार्य बेहोश हो गए तो सची माता ने जाके चौरण चरण की रज ले ली उनकी, क्योंकि महाप्रभु जी का आदेश था कि तुमने उनका अपराध किया है, जब तक तुम उसके चरण की रज नहीं लोते तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। और सब भक्त परेशान थे कि महाप्रभु अपने माँ पर कृपा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगा, भक्त का अपराध करने वाले पर कृष्ण प्रेम की कृपा नहीं हो सकती। तो तब वो निश्चय कर लिया उसने कि अद्वैत आचार्य की चरणों की धूल मुझे लेनी है, तो इंतजार करती रही, एक दिन कीर्तन में बेहोश हो गए, तुरंत रज प्राप्त किया, तब भगवान ने उन पर कृपा किया। अपनी माँ की बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान, चैतन्य महाप्रभु। तो रज लेने का तरीका मतलब उसकी, उस व्यक्ति को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और रज लेने का और एक अर्थ है, उस व्यक्ति की सेवा करना। रज लेना एक एक्सटर्नल एक्टिविटी है कि हम किसी का पैर लेकर सर पे लगाया, वो एक बात है, उसका सूक्ष्म अर्थ यह है कि उस व्यक्ति की सेवा करना, उसको प्रसन्न करना। और रज लेते किस लिए है, कृपा प्राप्त करने के लिए। तो जब सेवा करके प्रसन्न करते हैं तो अपने आप उसकी कृपा, संतुष्ट हृदय से आशीर्वाद देता है ना, वही रज प्राप्ति है। तो ये वृंदावन से गोपियों से विदा लेकर मथुरा गए हैं, कृष्ण से मिले हैं, सब उनको रिपोर्ट दिया है और कह रहे हैं कि हम जा रहा हूँ वापस। बोले वापस क्यों जा रहे हो, काम तो हो गया अभी, जो भी था काम, मैं तप करने जा रहा हूँ। तो उधर वापस जब गए ना तो गोपियों से नहीं मिले, केवल तप किया उन्होंने जाके। अब ये तप बड़ा विचित्र तप है, हम तप कब करते हैं बताइए, जब हम इस स्तर पे हैं, हमको इस स्तर पे आना है, निचले स्तर से प्रगति करके ऊपर के स्तर पे आना है तो हम तप करते हैं, कुछ त्याग करते हैं, कुछ प्रण लेते हैं, कुछ व्रत लेते हैं। हर एक व्यक्ति तप करता है तो निचली स्थिति से ऊपर वाली स्थिति में जाने के लिए तप करता है। कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद से नीचे आने के लिए तप नहीं करता है। तो पूरे इतिहास में दो ही व्यक्तियों ने ऐसा तप किया है सर्वोच्च पद से नीचे आने के लिए, एक है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अपने आप ही जन्म ही उनका सर्वश्रेष्ठ है, पूरे ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक है वो, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने तप किया है पत्थर बनने के लिए, पत्थर तो कोई जीव भी नहीं होता है ना, अमीबा भी जीव होता है, एक पेशीय प्राणी होता है अमीबा, पैरामेशियम। पत्थर तो होता है इनर्ट, पत्थर को भी वैसे जीवन प्राप्त है, हिमालय का पत्थर जो है जीवित है, मूविंग माउंटेन्स आर द हिमालयन माउंटेन्स। 10 साल के बाद जाएंगे ना तो आपको वही हिमालय अलग, अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो पता चलेगा कि ये मूवमेंट हो रही है उनकी। तो पत्थर को भी जान होती, लेकिन आम तौर पे पत्थर जो है वो होता है इनर्ट, यानी जड़ होता है, जड़। उस पर आप पत्थर उस पर कुल्हाड़ी मारो, उसको तोड़ो, उसको बॉम्ब से सुरंग लगा के फोड़ दो, वो कुछ प्रतिकार नहीं करता है वो। या टट्टी पेशाब जानवर करते हैं उसके ऊपर, वर्षा होती है, धूप आती है, सब कुछ होता है, लेकिन पत्थर को कोई रिएक्शन करने का स्कोप नहीं होता है उसके अंदर। तो सबसे उन्नत जीव, सबसे प्रगत जीव, बुद्धि से भी और हर प्रकार से अधिकार से सर्वश्रेष्ठ जीव जो है, उसने ब्रज में बरसाने में पत्थर बनने के लिए तपस्या किया है। वो भी कितना साल किया है पता है आपको? 120,000 साल तपस्या किया है। अपने कार्य के पहले सत्ययुग के पहले 60,000 साल तपस्या किया, नो रिस्पॉन्स, उनको कोई जवाब ही नहीं मिला। फिर काम पे चले गए, अपनी सेवा में गए और 17,28,000 साल का सत्ययुग होता है। उसमें पहले 60,000 साल तपस्या किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, छोड़ दिया उसको, पूरा काम किया। और 17,28,000 साल के आखिरी 60,000 दोबारा तपस्या की। उसके अंत में कृष्ण ने दर्शन दिया, बोले क्या चाहते हो? वो कहते आपके और गोपियों के चरणों की धूल चाहता हूँ। तुमने बोला जाओ ब्रज में चले जाओ। बोले ब्रज में कहाँ जाऊँ? बोले विश्वानुपुरम गत्वा, वहाँ पर विश्वानुपुर में चले जाओ, वहाँ पर पत्थर बनो। तो इतना तप किया पत्थर बनने के लिए, पर अभी बरसाने में बैठे हैं ब्रह्माचल बन के, ब्रह्मगिरी, चार मुख वाले चार पर्वत है वहाँ पर, इसके ऊपर कृष्ण राजा रानी लीला करते हैं। तो अनायासी रज प्राप्त होते रहते हैं, कोई भागने की जरूरत नहीं है। कहाँ है रज तुम्हारे, कहाँ पैर तुम्हारे, कहाँ है, चल रज दो रज दो, कहाँ भाग रहे हो, ऐसा नहीं, अपने आप आके भगवान लीला कर रहे हैं। तो और एक ब्रह्मा जी और दूसरे उद्धव जी, क्यों ऐसे कह रहा हूँ मैं, एक तरह से सर्वोच्च स्थिति में थे उद्धव जी, उनके आगे खुद को भी उनको पता चलने लगा था कि अभी कृष्ण के विषय में और मैं कहाँ आगे जाऊँ, इतना सानिध्य है, इतना प्रेम है, इतना निकट रहते हैं, इतना सब कुछ इतना बेस्ट ऑफ बेस्ट है कि लोग भी सोच रहे हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है। तो तथाकथित सर्वश्रेष्ठ पद से उन्होंने तृण का पत्ता, यानी वृक्ष योनि में भी तृण का पत्ता बहुत निचला माना गया है। अभी बरगद का पेड़ है तो उसका अपना एक पोजीशन है, पीपल का पेड़ का अपना पोजीशन है, नीम का पेड़ है, गुलेर का पेड़ है, सबको अपना अपना, अर्जुन का पेड़ अपना अपना पोजीशन है उनको। तृण के पत्ते को क्या पोजीशन है? ऐसे अनंत होते हैं वो, दुर्बल दुर्लभ भी नहीं है। तो तृण का पत्ते का पोजीशन प्राप्त करने के लिए तपस्या किया, और बहुत लंबा तपस्या का, कठोर तपस्या किया, और आखिर में वो इसी जन्म में, कृष्णलीला भी समाप्त नहीं हुई है, इसी जन्म में तृण के पत्ता बने वो, उसको कहते हैं गुलमलता। गुलमलता नाम का तृण का पत्ता है, कुसुम सरोवर के पास में है, वहीं पर बैठ के तपस्या की, वहीं पर गुलमलता का स्वरूप प्राप्त किया। और जब भी गोपियों ने लीला करते करते वहां पर आई, गोपियों ने उन पर भी अपने कदम चलाए और चरणों की रज प्राप्त की। ऐसा है उद्धव जी महाराज। ये उद्धव जी का जो प्रसंग है ना, वो नंदगांव वासियों के लिए बहुत विकट प्रसंग है। नंदगांव वासियों के लिए दो दो विकट प्रसंग है लाइफ में, जो आज भी 5,500 साल वर्ष के बाद भी जब ये कथा चलती है या लीला चलती है, नाटिका चलती है, लीला चलती है, रासलीला कहते हैं उसको ना, मंचन, मतलब मंच पर भी ये हर साल में कथा होती है। 8-8 दिन, दिन के 8 घंटे 8 दिन तक ये एक ही लीला चलती है, उद्धव लीला। अभी हमने आपको 1 घंटा भी नहीं बताया, अभी तक 40 मिनट 50 मिनट हो गए। ये सब चीज़ 8 घंटे 1 दिन ऐसे 8 दिन तक चलता है, और केवल नंदगांव के वासी उसमें रोते रोते और रोते ही रहते हैं कंटिन्यूसली। और दूसरी कथा है अक्रूर गमन, जब अक्रूर जी आके कृष्ण को बलराम को ले गए, वो भी कथा 8 दिन चलती है ड्रामा के रूप में, और तभी भी रिवासी नंदगांव के बहुत रोते हैं। उनके लिए वो कृष्ण का नंदगांव से जाना ये बहुत ही दुखद प्रसंग है, और उद्धव जी का आके रोना ये भी दुखद प्रसंग है उनके लिए। आज भी उद्धव जी कुसुम सरोवर में गुलमलता के रूप में निवास करते हैं और इसी भाव पर चिंतन करते हैं जो उन्होंने गोपियों के जीवन में प्रत्यक्ष देखा था। क्योंकि उद्धव जी ऐसे एक ही व्यक्ति है जिनके सामने ये सब उत्कट भाव प्रकट हुए हैं। कृष्ण ने भी ये भाव का अनुभव नहीं किया, क्योंकि कृष्ण जब आते तो सान्निध्य होता था ना। अभी कृष्ण को, कृष्ण के लिए जिनको विरह हो रहा है उसका अनुभव कैसे होगा, क्योंकि कृष्ण कहाँ हैं और गोपियाँ कहाँ हैं। तो कृष्ण के ना होते हुए अगर कोई उनको मिल रहा है तो वही उनको बताएगा ना उनको कृष्ण के प्रति क्या भाव है। तो ये विचित्र प्रकार के, जो विविध प्रकार के भाव मैंने आपको बताए, वो उद्धव जी ने ही उसका अनुभव किया है। क्योंकि गोपियाँ भी बहुत डिग्निफाइड डिवोटीज थी, वो सब जनता में जाकर अपना प्रेम प्रकट नहीं करती थी कि ऐसे हमको प्रेम हो रहा है कृष्ण के प्रति, वो सारा एक दूसरे के साथ में शेयर करती थी। लेकिन किसी और के साथ में वो प्रेम का एक कहते हैं डिग्निटी है, एक आत्मसम्मान है प्रेम का। जैसे हम, जो आपका अपने पति पर प्रेम है, मेरा मेरी पत्नी पर प्रेम है, तो हम पब्लिक में आके उसको एग्जिबिट नहीं करते हैं, वो एक प्राइवेट विषय है कि हमारा अपने पत्नी पर, पति पर कितना प्रेम है। उसी प्रकार से गोपियों का भी वो प्राइवेट विषय है, कृष्ण का उनका प्रेम ये निजी विषय है, उनका गुप्त विषय है। और वो माँ यशोदा के पास जाके बोलेंगी नहीं कि हमको क्या लग रहा है, नंद बाबा के साथ जाके व्यक्त नहीं करेंगे उनको क्या लग रहा है, पूर्णमासी के पास जाके व्यक्त नहीं करेंगे, ग्वाल बालों से व्यक्त नहीं करेंगे हमको क्या लग रहा है, अपने आप में बात कर सकते हो अधिकतर। तो इसलिए उद्धव जी ऐसे एक ही व्यक्ति हैं जिनके सामने ये सब एग्जिबिट हुआ। इसलिए आज भी उद्धव जी वहां बैठकर इसी अनुभव पर चिंतन करते रहते हैं कि उन्होंने क्या देखा, और आज भी उसकी गहराई का पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं। तभी अब 5 मिनट बाकी है, कुछ और बताऊंगा। तो उद्धव जी अभी जब कृष्ण जाने लगे ना लीला समाप्त करके, तो उनको भी अनुभूति हुई कि कृष्ण भी जा रहे हैं। कैसा है ना, जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम जब होता है तो प्रेमी व्यक्ति क्या कर रहा है उसको देखकर उसके हृदय की बात प्रेमी व्यक्ति जान लेता है, आम व्यक्ति नहीं समझ सकता है वो। उद्धव जी बड़े प्रेमी थे कृष्ण के विषय में। तो कृष्ण ने क्या किया, सारे द्वारकावासियों को ना द्वारका से बाहर लाया उन्होंने, और प्रभास क्षेत्र में बोला यज्ञ करो आप। तो उद्धव को लगा, अरे द्वारका स्वयं भगवान का धाम है, वो इतना पवित्र क्षेत्र है, तो यज्ञ के लिए द्वारका से ज़्यादा पवित्र क्षेत्र कौन सा हो सकता है। अब तो भगवान उनको द्वारका से निकाल के द्वारका के बाहर वाले प्रभास क्षेत्र में क्यों यज्ञ करवा रहे हैं, इसका मतलब द्वारका खाली कर रहे हैं, इसका मतलब छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने अपना अंतम में निर्णय कर लिया मन में कि ऐसा ही है। और कृष्ण को पूछा भी कि क्या आप अपनी लीला को समाप्त करके जा रहे हो क्या, तो उन्होंने कहा सही है मैं जा रहा हूँ। तो उद्धव ने कहा मैं नहीं रह पाऊँगा आपके बिना, आप मुझे, आप जहाँ जाओगे कहीं और लीला करने जा रहे हो मुझे वहाँ ले चलो, मैं आपके संग ही रहना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं, आप मेरे साथ नहीं आ सकते हो, आपके लिए सेवा है, वो करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा पीछे। तो प्रेम का एवरेज लक्षण होता है कि, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेमी जो होता है ना, वो मुझे कैसे सुख मिलेगा इसके बारे में विचार नहीं करता है कभी। मेरे प्रीतम, जो प्रीतम मेरे हैं, जो प्रिय प्रिय है मेरे, इन पर मैं प्रीति करता हूँ, उनको क्या अच्छा लगेगा वो करना चाहता हूँ, चाहे मुझे दुख हो जाए उसके अंदर। भले मेरी इच्छा है आपके साथ जाने की, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरी ये सेवा है, तो निश्चित रूप में वो सेवा करूंगा मैं, आपके साथ चलने का कोई प्लान नहीं। हनुमान जी को भी राम ने कहा था यू कैन कम विथ मी, आप रहो और मेरा गुणगान करते रहो, जब तक सूरज चांद रहेगा मेरा गुणगान करते रहना। जो तोता था राजा रानी का, उसको भी साथ जाना था, तोता को बोल दिया राधा कृष्ण भगवान ने कि तुमको रहना है पीछे, हमारा गुणगान करना है। ऐसे कई लोगों को कई चीज़ें बताई गई हैं, और जो सच्चा प्रेमी है वो तुरंत मान जाता है कि यस वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल डू। तो उद्धव जी ने क्या सेवा की है, उन्होंने कहा कि जब मेरी पत्नियाँ, अभी आपको पता ही चला कि मैं जाने वाला हूँ, तो मैं जाऊँगा तो मेरी पत्नियाँ बड़ी व्याकुल हो जाएंगी, बहुत व्याकुल हो जाएंगी, तो उनको आपको लिबरेट करना है, उनको मुक्त करना है, आपको अधाम में पहुँचाना है। कितना बड़ा काम जानते हो आप, एक तो है कृष्ण की महिषियाँ, कृष्ण की पत्नियाँ हैं वो, ऊपर से कृष्ण के विरह में आने वाली है, कृष्ण जाने के बाद में कैसा विलाप करेंगी वो, और ऐसे विलाप में उनको अपने स्वरूप सिद्धि में पहुंचाना है, ओरिजिनल भाव में पहुंचाना है, तो उसके लिए कोई योग्य व्यक्ति होना चाहिए ना, काबिल व्यक्ति होना चाहिए, सक्षम आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। तो उद्धव जी को भगवान ने चुना। उद्धव जी अभी वहाँ पर तप कर रहे हैं, अभी वो गुलमलता के रूप में है। तो रानियों को उन्होंने परीक्षित महाराज और वज्रनाभ, इन दोनों को आदेश देकर रखा था, जब मैं जाऊंगा तो मेरी रानियां बहुत विलाप करेगी, तो उनको आप ब्रज में लेके जाना। तो वो उनको दोनों रानियों को, सब रानियों को लेकर, दोनों परीक्षित और वज्रनाभ, वज्रनाभ उनके ग्रेट ग्रैंडसन है, अनिरुद्ध के पुत्र हैं वो। वो लेके ब्रज में आए, जमुना जी से मुलाकात हुई, और बहुत लंबी कथा है, मैं छोटी से बता रहा हूँ उनको। जमुना जी ने उनको कहा कि आप उद्धव जी से मिलो कुसुम सरोवर पे जाके, तो आपको प्रेम का रहस्य समझाएंगे। तो ये सब रानियाँ कुसुम सरोवर गई हैं, और उन्होंने वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन किया है, कृष्ण के नाम का गुणगान किया है। अभी हम लोग भी कीर्तन करते हैं, और रानियों ने भी कीर्तन किया है, इतना अंतर होगा उसके अंदर। वो तो कृष्ण पर प्रेम करने वाली उनकी निकट एकदम निवासिनी थी। हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कीर्तन में रस प्राप्त करने की, तो कैसा कीर्तन हो गया होगा कुसुम सरोवर पे, आप हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते। उनका वो प्रेम संकीर्तन सुनकर मनुष्य रूप में उद्धव जी प्रकट हो गए, गुलमलता के रूप से मनुष्य रूप में आ गए। और फिर यानी वहाँ पर एक हरिनाम का महात्म्य भी वहाँ पर एक प्रकट होता है कुसुम सरोवर पे, कि कैसा हरिनाम की शक्ति है। और फिर वो जब उद्धव प्रकट हुए, तो उद्धव जी ने कुसुम सरोवर के किनारे बैठकर सभी रानियों को 30 दिन तक भागवत सुनाया है। सुखदेव जी ने 7 दिन सुनाया, समय कम था उनके पास, इनके पास समय की कमी नहीं है, जितना मर्जी सुनाओ विस्तार रूप में। तो 30 दिन तक उद्धव जी ने भागवत किया है, और विशेष बात उस भागवत की ऐसी है कि सारी रानियां विलाप कर रही थी कृष्ण के ना होने पर, बहुत फूट फूट कर रो रही थी, अपने अपने भाव को प्रकट कर रही थी। लेकिन भागवत के प्रथम श्लोक का उच्चारण करते ही वो प्रसन्न हो गई एकदम। अभी रो क्यों रही थी, कृष्ण के सानिध्य को मिस कर रही है वो, इसलिए वो रो रही है, कृष्ण है नहीं इसलिए रो रही है। और रोना बंद क्यों किया, क्योंकि कृष्ण का होने का अनुभव हुआ उनको। तो भागवत का महात्म्य ये है कि भागवत का हर एक श्लोक व्यक्तिगत रूप में कृष्ण है, ध्वनि रूप में कृष्ण आपको सत्संग देंगे, संग देंगे। तो उस उद्धव जी कह रहे हैं भागवत, वो भी एक बड़ी बात है। और उद्धव जी के मुख से जब भागवत का प्रथम श्लोक सुना और आगे 30 दिन सुना, तो तभी बाद में रोए ही नहीं, एक बार भी रोए नहीं, क्योंकि जिस कृष्ण के विरह में रो रहे थे, उस कृष्ण का निकट सान्निध्य का अनुभव हो रहा है कि साथ में ही है, तो क्यों रोए। जिसके लिए आप रो रहे हो, आपके साथ में आएगा तो आप क्यों रोते रहेंगे, बस रोना बंद। इस तरह से 30 दिन तक भागवत सुनाया, उसमें उनकी कथा भी आई कि भगवान का कैसा विवाह हुआ, रुक्मिणी से, सत्यभामा से कैसा हुआ, जम्बावती से कैसा हुआ, मित्रविंदा से कैसा हुआ, लक्ष्मणा से कैसा हुआ, सबका विवाह की कथा, अपनी विवाह की कथा स्वयं सुनी उन्होंने। और उद्धव जी की कथा में ऐसी शक्ति थी कि वो कथा केवल सुनने रहे थे, वो सब देख रहे थे, पूरा रनिंग रनिंग सीन देख रहे थे। इट वॉज नॉट ऑडियो, इट वॉज वीडियो। जैसे आप कथा में बैठे हो, आप पूरा, आपको चित्रपट नजर आ रहा है कि कैसे कैसे हो रहा है। तो पूरा भागवत जो है ना, वो चित्रपट के रूप में उन्होंने देखा, अपने आप को भी देखा, विवाह करते हुए कृष्ण के साथ, घर बसाते हुए देखा द्वारका में, सब लीलाओं की याद स्मृति कराई गई उनको। और 12 स्कंद के बाद में अपने स्वरूप में, अपने दिव्य स्वरूप में, धाम के स्वरूप में वो सब लीन हो गई, एक रूपा हो गई, और उनका उद्धार हो गया। तो उद्धव जी की कृपा से भगवान की सारी रानियां अपने स्वरूप सिद्धि को प्राप्त किया उन्होंने, और धाम में पधारी वो। क्योंकि देखो, यादव कुल का वापस लेने का काम भगवान ने खुद किया, जो भी कुछ है वो ऑर्केस्ट्रेट किया, और प्रभास क्षेत्र में लेके गए, वहाँ से यादव कुल को अपने धाम में लेके गए। पत्नियाँ, ये अलग ग्रुप था, बहुत विशेष ग्रुप था वो। 16,108 कोई साधारण नंबर नहीं होता है, एक एक पत्नियाँ ऐसी विशेष पत्नियाँ थी उनकी। वो सबको उद्धव जी ने तार दिया है। ये प्रेम की शिक्षा गोपियों से प्राप्त करने के बाद वो इतने योग्य हो गए कि भगवान ने उनको ये सेवा देने के लिए योग्य समझा। और फिर भी अभी भी उद्धव जी वहीं पर गुलमलता के रूप में निवास करते हैं। तो आइए हम उद्धव जी को प्रणाम करें, है ना। उद्धव जी ऐसे विशेष भक्त हैं, देव भाग नाम के व्यक्ति के पुत्र हैं वो, जो कुंती के रिश्ते में हैं, बड़े महान व्यक्ति है वो। और उनका चरित्र जो है इतना श्रेष्ठ है, कृष्ण ने उन पर अनंत कृपा की है। ये एक उनको टूर पे भेजकर जो उनको प्राप्त कराया है, वो किसी को प्राप्त नहीं कराया उन्होंने, किसी पुरुष शरीर में रहने वाले भक्त को इतना उच्च प्राप्ति नहीं कराया उन्होंने जितनी उद्धव जी को कराई है। ब्रह्मा जी के शीश पर उन्होंने लीला रचाई है, और ब्रह्मा जी देखते रह गए, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई गोपी से संपर्क नहीं हुआ है, आदान प्रदान नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ है कभी। उद्धव जी को प्रत्यक्ष गोपियों के साथ संवाद करने का 6 महीने रहने का मौका मिला है और उन्होंने प्रत्यक्ष उनके अस्तित्व के द्वारा सारा रहस्य जान लिया उन्होंने, प्रेम का रहस्य। इसलिए उद्धव जी बड़े महान भक्त हैं भगवान के। तो आइए उद्धव जी को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें भी उस प्रेम का एक अंश कभी प्राप्त हो गया तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।